तो आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये श्लोक भगवान कृष्ण की देवताओं से भिन्नता के बारे में वर्णन करता है। इस अध्याय का नाम है कर्म योग कि किस प्रकार कर्म करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। देवान भव्यतानेन ते देवा भवयन्तु वा परस्परं भावयन्तश्च श्रेयपरं अवापस्था। देवान भव्यतानेन ते देवा भवयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेयपरं अवापस्थ। देवान भाव्यतानेन ते देवा भवयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेह परम अवापस्था। इसका अनुवाद पढ़ेंगे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो यहां पर सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि यहां पर यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। तो एक शब्द देवता यहां पर उपयोग किया गया है तो बहुत जरूरी है जानना कि देवता में और भगवान में क्या भेद है। अधिकतर लोग भगवान बोलते हैं हिंदुस्तान में, प्राय किसी से पूछो आप किसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो जनरली लोग क्या कहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और कौन से भगवान की? और सभी भगवान की। तो जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए आपके पिता कौन है, तो कहता है कि मोहल्ले में सभी जितने भी मेरे से बुजुर्ग हैं सभी मेरे पिता हैं। क्या ये सही उत्तर है? पिता एक होते हैं या अनेक होते हैं? एक। लेकिन फिर भी संसार में भ्रमित पुरुष, मनुष्य, स्त्री, सभी लोग भगवान को कहते हैं, सब भगवान, भगवान एक है। तो एक भगवान की बारे में ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण है और 33 करोड़ देवी देवता उनकी सेवा में लगे हैं। तो कई लोग नाराज हो जाते हैं अगर उनके भगवान को देवता कहकर के पुकारा जाए, नाराज होते हैं। देखा है आपने कभी कोई तो शिव का उपासक है, दुर्गा जी का उपासक है, गणेश का उपासक है, उसको बोलो नहीं कृष्ण ही पर भगवान है, तो उसके पास में बेसिस ऑफ अथॉरिटी कुछ नहीं है, शास्त्र नहीं है, ज्ञान नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों को सुनते हुए जिनके आगे वो पुष्प और धूप बत्ती चढ़ाता चला आ रहा है वो कहता है वही भगवान है बस। और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, आरूढ़ हो जाता है, तर्क करने लग जाता है, लेकिन भगवान का भक्त नहीं बनता। इसलिए प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित का एक कोट करते थे और कहते थे, उपदेशो नाम मूर्खा नाम, जो मूर्ख व्यक्ति है उसको उपदेश की आवश्यकता नहीं है। उपदेशो ना मूर्खा नाम प्रकोपायो न संत थे, वो गुस्से में तो आएगा लेकिन संत पुरुष नहीं बनेगा। तो अगर हम चाहे हमारे परिवार के, हमारे आसपास, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी कृष्ण भजन करने लगे तो हमें उन्हें बोलना तो चाहिए परंतु इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि हमसे भी देवताओं का अपमान हो जाए और वो व्यक्ति भी क्रोधित होकर के भगवान का विरोधी बन जाए। क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण विरोधी होता है उसकी बहुत बुरी गति होती है। जैसे मान लीजिए भगवान कृष्ण है कमिश्नर के समान, और 33 करोड़ देवी देवता हैं हवलदार के समान, उनकी सेना के सैनिक हैं। अभी रोड पे खड़े हवलदार को आप अगर बोल दें और कमिश्नर साहब कैसे हैं, तो कैसा लगेगा उसको? इंसल्टेड फील होगा, वो कहेगा अच्छा कमेंट कर रहे हो, सरकासिज्म, मेरे ऊपर आप व्यंग कस रहे हो, मैं हवलदार हूं तो क्या हुआ, देश की रक्षा तो करता हूं अपने स्तर पर अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। और कमिश्नर साहब खड़े हो, उनको कोई व्यक्ति आकर कह दे और हवलदार ठीक है, मंत्री हो कोई व्यक्ति उसे अपना घमंड हो और बोले कमिश्नर और हवलदार ठीक है, तो उसकी भी क्या हो जाएगी? इसी प्रकार से भगवान के बारे में लोग जानते नहीं है और लोग क्या करते हैं, शिव जी अरे 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 वो तो आदि भगवान है, गणेश जी ओहो वो तो भगवान है, लक्ष्मी गणेश पूजा दीपावली पे अर्चना करते हैं, वो जानते ही नहीं है कितना बड़ा अनिष्ट होता है इससे। हवलदार को कमिश्नर बनाकर बिठा देना और कमिश्नर भगवान कृष्ण को नीचे कहीं सभी देवी देवताओं के घर में, मैं देखता हूँ घर में अल्टर होते हैं, मंदिर के विग्रह होते हैं, साईं बाबा जीसस क्राइस्ट ऐसी फोटो रखी होती है, उनके नीचे कृष्ण भगवान का फोटो, हमारे घर लड्डू गोपाल भी है, साईं बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, तो ये कैसा ही मायने में कमिश्नर को हवलदार बनाने वाली बात है। और जो हवलदार है वो ऊपर दुर्गा देवी शिव जी ऊपर बैठे हुए हैं। भगवान की संरचना में जो व्यक्ति सही से कार्य नहीं करता है उसको भगवान दंडित करते हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य है भगवान का कि तो फिर भगवान देवताओं की बात क्यों कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं देवान भव्यता अनेन ते देवा भव्यंतु वा। तो भगवान कहते हैं देवताओं को प्रसन्न करके तुम यज्ञ करो ताकि वो प्रसन्न हो। तो देवताओं का यज्ञ कैसे होता है? जैसे अब सूर्य देव है तो सूर्य देव का क्या यज्ञ करना है? सूर्य देव को अगर हम ये सोचे ये भगवान के नेत्र हैं, तो इस प्रकार से हम उनको प्रणाम कर सकते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद सुबह सुबह उठ करके जानते थे कि सूर्य भगवान के नेत्र हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं यक्षरेशो सविताम सकल ग्रहणाम राजा समस्त सुर मूर्तिर शेष तेजम यस्या गया भ्रमति संभ्रत काल चक्रम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। यक्षरेशु, जिस प्रकार से यक्ष मतलब होता है अक्ष मतलब आंखें, यक्ष सुरेशु, जैसे सूर्य भगवान की आंखें हैं और ये कैसे ऑर्बिट के ऊपर घूम रही है, सारे के सारे ग्रह सूर्य के आसपास और सूर्य भी घूम रहे हैं, तो ऐसा ज्ञान यक्षरेशु सविताम, सविता मतलब सूर्य, सविता मतलब सूर्य, यक्षरेशु सविताम सकल ग्रहणाम जितने भी ग्रह हैं, है ना, इसमें राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजम, राजा के समान होकर के बैठा हुआ है सूर्य, लेकिन वो है कौन? अक्षरेशु, भगवान की आंखों के समान है, है ना। तो ऐसे अगर हम भगवान के सूर्य को प्रणाम करें तो अच्छा लगेगा, लेकिन सूर्य देव को बोले ओहो सूर्य नारायण मेरे भगवान मेरे प्रभु और एक लोटा जल लेके चढ़ा दिया, अब कृष्ण भगवान को पूजा नहीं किया और सूर्य की भी स्थिति सही रूप से नहीं पूजा, तो क्या खुश फल मिलने वाला है? इसके अनेक उदाहरण है। जैसे हम देखते हैं शास्त्रों में एक भक्त का नाम आता है चंडीदास, चंडीदास नाम के एक भक्त हुए, चंडी मतलब काली की पूजा करने वाला, चंडीदास जी बहुत ही विशेष चंडी के भक्त थे और माता के बहुत ही गहरे उपासक थे चंडी के। अब जो ये व्यक्ति थे चंडीदास, इनके एक भाई थे वो विष्णु भगवान के बड़े उपासक थे और विष्णु भगवान की उपासना करके वो किसी और मंदिर में जाया नहीं करते थे, बस भगवान कृष्ण और विष्णु का ही भजन करते थे, परंतु चंडीदास सिर्फ चंडी काली की पूजा करते थे। तो एक इन्होंने अपने भाई से व्यवहार तोड़ दिया क्योंकि चंडी की पूजा करने से उनको बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था और संसार में लोगों को क्या चाहिए? ऐश्वर्य, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। वो प्राप्त हो जाने से घमंड भी आया था और घमंड आकर के उन्होंने अपने भाई से दुर्व्यवहार करे, उनको अपने महल से बाहर निकाल दिया। जब महल से बाहर निकाल दिया, उनके भाई बाहर ही रहते थे, एक दिन दोनों अपने अपने भगवान, वो चंडी की पूजा करना चाहते थे देवी की और वो अपने भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए एक गार्डन में आए, बगीचे में, और वहां पुष्प आदि चुनने लगे। तो जब वो पुष्प चुन रहे थे तो इनके भाई ने एक पुष्प तोड़ा और मन की गति से भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया, मन से। और चंडीदास ने उनके हाथ से छीन लिया, फूल लाओ इधर दो, तुम्हारा क्या हक है मेरे बगीचे से छीन रहे हो, गरीब व्यक्ति, करो तुम अपने भगवान का भजन, बने रहो सुदामा के जैसे, ऐसे कहके ले लिया और लाकर के उसको अपनी चंडी के चरणों में अर्पित किया। तो चंडीदास इससे पहले सिर्फ नाम के चंडीदास थे, लेकिन जब ये घटना घटी, ये जो उनका जीवन में आया, उसके बाद से चंडीदास विश्व प्रख्यात हो गए। चंडीदास ने जैसे ही चंडी के चरणों में, दुर्गा माई के चरणों में वो पुष्प चढ़ाया, दुर्गा माई प्रकट हो गई। और दुर्गा माई प्रकट होकर कहती है, चंडीदास आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अभी चंडीदास घबरा गए, हाथ पांव कांपने लगे, पूरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए, बोले, देवी मैंने आपका पूरा जीवन उपासना किया, लेकिन आज आप कैसे प्रकट हुई? देवी कहती है, क्योंकि सही मायने में आज पहली बार तुमने मेरी पूजा की है। कहा, कैसे? मैं तो रोज ही आपको पुष्प चढ़ाता हूं। कहा, रोज तुम पेड़ से तोड़ करके सीधा पुष्प मुझे चढ़ाते हो, लेकिन आज मेरा पुष्प जो है तुमने चढ़ाया, ये पहले मेरे प्रभु भगवान विष्णु के पास गया और उसके बाद में उनका महाभोग बनकर, प्रसाद बनकर के, निर्माल्य के रूप में मेरे पास आया, इसलिए मुझे आज प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हनुमान जी को भोग लगाओ, रामचंद्र जी को भोग नहीं लगाओ, हनुमान जी आपसे रुष्ट रहेंगे पूरा जीवन। हो सकता है किसी व्यक्ति को गाड़ी मिल जाए, लेकिन वो ये भूल जाएगा कि ये गाड़ी क्यों मिली है मुझे, ताकि उस गाड़ी से मुझे अहंकार मिले, मेरा एक्सीडेंट हो, मेरा खर्चा ज्यादा बढ़े। देखा जाएगा, अगर प्राकृतिक रूप से भी देखें तो उस व्यक्ति का जीवन दुष्कर हो जाता है। लेकिन अगर वो राम के चरणों में प्रसाद भोग लगाने के बाद में हनुमान के चरणों में लगाया जाए, हनुमान अधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे आप सब अगर कृष्ण के भक्त हैं तो आप चाहेंगे पहले भगवान को भोग लगे फिर मुझे लगे। अगर भगवान को भोग लगे बगैर आपको दिया जाए, आप कहेंगे हम नहीं खाएंगे। तो 33 करोड़ देवी देवता भी एक अन्न का दाना भी स्वीकार नहीं करते हैं, शास्त्र की रचना। इसीलिए कहा गया इस श्लोक में, कहते हैं क्या, भावयन्तु भावयन्तु परस्परम, आपस में परस्परम। जिस प्रकार से आप देखते हैं, और उदाहरण में व्रजवासियों ने इंद्र पूजा प्रारंभ की थी। इंद्र की पूजा क्यों करते थे? ताकि बारिश हो। अब यज्ञ में उसको फल फूल सब्जी दी जाती थी और वो बारिश करते थे। भगवान कृष्ण ने आकर के स्वयं अपने द्वारा कही गई चीजें, अपने द्वारा बनाए गए देवी देवताओं की बात को काटा कि हे मेरे पिता नंद, व्रजवासियों आप किसको पूजा करते हैं? कहा, इंद्र की पूजा करते हैं। कहा, क्यों करते हैं? कहा, क्योंकि वो वर्षा करते हैं, वर्षा से गोवर्धन पर जल पड़ने से पेड़ पौधे और हमारे धान धन्य आते हैं और इससे हमारी गाय पुष्ट होती है और हमें अनाज मिलता है। तो उन्होंने कहा, अगर आप उसे ये फल फ्रूट नहीं भी देंगे तब भी उसकी सेवा है, वो तो करेगा ही। तो इस प्रकार से नंद बाबा को भगवान कृष्ण ने जब इस प्रकार से बताया तो सभी व्रजवासी, क्यों, कृष्ण की बात पर फेथ करते थे, विश्वास करते थे, सभी ने वो पूजा बंद की। और आप जानते हैं बहुत भारी वृष्टि हुई, भगवान ने फिर उनकी रक्षा भी करी और इंद्र को इस बात का एहसास भी हुआ, उनका घमंड भी टूटा कि मैं देवता बनकर के ये भूल जाता हूं कि मैं ही सब कुछ नहीं हूं, हर चीज के कारण कौन है? कृष्ण, सर्व कारण कारणम कृष्ण। तो भक्तों के साथ में ऐसा बहुत होता है, वो डरते हैं, मैंने 30 साल साईं की पूजा करी है, मैंने 30 साल शिव की पूजा करी है, अगर मैं कृष्ण पूजा करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो देवी देवता मुझसे नाराज हो जाए। हाँ, बिल्कुल नाराज हो सकते हैं आपसे अगर आप उनका अपमान करेंगे, यहां तक कि प्रचार करने वाले व्यक्ति से भी अपमान हो सकता है। अगर वो कृष्ण की स्थिति स्थापित करने में सभी देवी देवताओं को नीची दृष्टि से देखता है, मान लीजिए आज मैं प्रधानमंत्री की पोजीशन को स्थापित करना चाहता हूं कैबिनेट के अंदर, लेकिन मैं साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर को बोलता हूं, तुम लोग करते कुछ नहीं हो, बेकार हो, खाली प्रधानमंत्री सब कुछ, बाकी सब बेकार। नहीं, प्रधानमंत्री ने अपना कैबिनेट बनाया, अपने इतने सारे पोजीशन मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट बनाए उनकी, ताकि सुचारू रूप से देश की व्यवस्था चल सके। राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए राज्य मंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर। देश की व्यवस्था चलाने के लिए प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। और ये ब्रह्मांड की संरचना को चलाने के लिए होता है कॉस्मिक मिनिस्टर। कॉस्मिक क्रिएशन का कॉस्मिक मिनिस्टर कौन है? कृष्ण, ब्रह्मांड नायक। तो यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, वेद वचन में कहा गया, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लभ्यं सर्व ग्रंथिनां विपक् मोक्षः। तो यहां पर कहा गया है यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं, तो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति शुद्ध होती है, मतलब हमें अच्छे तरह से याद रहेगा अगर हम भगवान का भजन करते हैं और फिर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस्कॉन में अधिकतर भक्त, अगर आप उनका एजुकेशन देखें तो सभी मटेरियल एजुकेशन से आए हैं, भौतिक ज्ञान होगा, कोई एमटेक होंगे, कोई एमबीए होंगे, कोई साइंस बैकग्राउंड से होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, कोई सेना से आए होंगे, एयरफोर्स में होंगे, आर्मी में होंगे। भौतिक ज्ञान होने के बाद भी वो कैसे शुद्ध संस्कृत का उच्चारण करते हैं और शुद्ध हिंदी उनके हृदय में प्रवेश करती है, उसका मूल कारण है आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। उनका आहार शुद्ध हो जाता है क्योंकि वो लहसुन प्याज आदि चीजें नहीं खाते और जो खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाते हैं। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आदमी की सत्व गुण की शुद्धि होती है। सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, अगर आप अपने बच्चों को भी ये ना सोचे अंडा खाने से शक्ति ज्यादा आती है, जैसे हमारे बच्चों के स्कूल में लिख करके भेजते हैं कि आप इनको एग नहीं देंगे तो इनके शरीर में ये कमी आ जाएगी, तो मैं रिटर्न में लिख के भेजता हूं कि दूध जो होता है उसमें पूर्णता होती है, जो है ना, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, और कोई भी कमी नहीं आएगी हमारे जीवन में, नहीं आएगी तो इनके में भी नहीं आएगी। वैसे हजारों एग्जाम्पल है जिन्होंने दूध के आहार पर, शाकाहारी भोजन से ही शक्ति प्राप्त करी है। तो बहुत सारे उदाहरण हमारे पास अवेलेबल है। एक दिन कोई चर्चा कर रहे थे तो मैंने उसमें कई सारे लोगों के उदाहरण पढ़े। विदेश में भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो कि शाकाहारी भोजन पर चलते हैं, पर हम लोग शाकाहारी पे भी नहीं चलते हैं, हम लोग प्रसादहारी भोजन करते हैं। शाकाहार को भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करते हैं जिससे क्या होती है, ध्रुव स्मृति, एक बार जो पढ़ लिया वो याद रह जाएगा। और स्मृति लभ्यं सर्व ग्रंथिनां, स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। अब जब मन शुद्ध होगा, पहले आहार शुद्ध हुआ, आहार शुद्ध होने से तन शुद्ध हुआ, तन शुद्ध होने से स्मृति रिमेम्बरेंस ये शुद्ध हुई, उसके बाद में हमारी स्मृति के बाद में क्या हो गया, सर्व ग्रंथि नाम। अब व्यक्ति पूर्ण रूप से चिंतन कर सकता है कि मेरा मनुष्य जीवन खाने पीने सोने के लिए नहीं है, भगवान के धाम में जाने के लिए है, भगवान की सेवा करने के लिए है। और सब मिलाकर कृष्ण भावना मर तक पहुंचते हैं विप्र मोक्षः, और वो व्यक्ति को जीवन में मोक्ष प्राप्त होता है अगर वो क्या करता है, पहली चीज यज्ञ करता है। तो इस कलयुग के लिए यज्ञ है भगवान का हरिनाम यज्ञ। अगर कोई हरिनाम यज्ञ नहीं करता तो ये सारी प्रक्रिया में कभी आहार उसका शुद्ध नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा होटल लगा ले, वैष्णव ढाबा। वैष्णव ढाबे में कुछ भी वैष्णव नहीं होता है, खाली नाम ही होता है वैष्णव ढाबा। वह प्याज भी बनता है, मांस भी बनता है, वो लोग खुद खाते हैं, बेचते नहीं है, लेकिन प्याज तो बेचते भी हैं। और वहां पर भोग नहीं लगता है भगवान का, तो ये नहीं कहना चाहिए व्यक्ति को, अरे हम तो वैष्णव है ना तो वैष्णव ढाबा में खा सकते हैं, हमारे लिए तो खोला हुआ है। वो हमारे लिए नहीं है, वो भौतिक संसार के लोगों को चकमा देने के लिए है। लेकिन भक्त को वही खाना चाहिए जहां भगवान का भोग पर उपस्थित हो, भगवान के द्वारा भोगा गया भोग उपस्थित हो। और किसी भी संसार में ऐसे बार आपको कई बार मिलेगा, हम वैष्णो देवी गए थे, हम आपको भोग देना चाहते हैं, हम साईं बाबा के वहां गए थे, शिरडी गए थे, वहां का भोग लेके आए हैं। आप देखिए गीता के अंदर इसी में लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तब साम, परपट के अंदर लिखा है। वैसे भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक हम आगे चर्चा करेंगे, भोक्ता राम यज्ञ तब साम सर्वलोकाम महेश्वरम। इस संसार में भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे अलावा कोई भोगने योग्य है ही नहीं, क्योंकि मैं भोगता हूं बाकी सब भोग्य है। मैं पुरुष हूं बाकी सब स्त्री है, चाहे पैंट शर्ट पहने तो क्या है आप पुरुष हैं, आप पुरुष हैं स्त्री हैं बताइए। हाँ जरूर थोड़ी गोपी गाय भी हो सकती है, भगवान के धाम में तो हर चीज चिन्मय है, गाय भी है पेड़ भी है, लेकिन भगवान खाली भोगता है बाकी सब भोग्य है। भगवान पुरुष है बाकी सब प्रकृति है, पुरुष प्रकृति स्थितो ही कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्म सु। पुरुष है भगवान बाकी सब प्रकृति है, सब प्रकृति हम सब भगवान। तो इस प्रकार से अगर कोई समझेगा कि भगवान एक भोगता है, 33 करोड़ देवी देवता, लोग बातें करते हैं देवताओं के बारे में, 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में जानते भी कुछ नहीं है। ऐसे देवता हैं जो आपकी पलकों पर बैठे हुए हैं, आपको पता है यहां बैठे हुए हैं, और आपकी पलक हर कुछ सेकंडों बाद नीचे लेके जाते हैं ताकि आपकी आंखों के अंदर प्रॉपर मॉइस्चराइजर आए, बंद हो जाए, रेस्ट मिलता रहे आपको। ऐसे ऐसे देवता हैं जो आपकी सांसों का काउंटिंग करने के लिए सांस की नाड़ियों में घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से 33 करोड़ देवी देवता, पवन देव, सूर्य देव, चंद्र देव, वायु देव, वरुण देव, है ना, कितने देवता हैं। खाली हम पकड़कर बैठ जाते हैं 4-5 चुनिंदा देवताओं को, एक देवता की पूजा करी और दूसरे देवता की नहीं करी तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे मैं प्रवचन करने वाला हूं, इस व्यास आसन पर बैठ करके भगवान और भगवान के आचार्यों भक्तों की प्रतिनिधि के रूप में यहां कथा कर रहा हूं, तो प्रभु जी ने माला किसको पहनाया मेरे को, लेकिन आप में से किसी एक को पहनाए और बाकियों को ना पहनाए तो दूसरे को खराब लगेगा नहीं लगेगा। ये भौतिक हमारी ह्यूमन मेंटेलिटी है, इनको क्यों पहना दिया, लेकिन हमें पहनाएंगे तो आप सब प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, है कोई दुखी हो रहा। ऐसे ही भगवान को अगर कुछ समर्पित करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्नता का अनुभव होता है। अभी आपने देखा चंडी देवी प्रसन्न होकर के चंडी दास को आशीर्वाद देती कि आज पहली बार तुमने मेरी सही रूप में उपासना करी। अद्वैत आचार्य हमारे पंच तत्व में आते हैं, चैतन्य नित्यानंद अद्वैत आचार्य, जिन्हें महाविष्णु और सदाशिव का युगल अवतार बताया गया। वो जो महाविष्णु के अवतार थे, मतलब जो आपने देखा होगा टीवी सीरियल में लेटे हुए भगवान सर्प के ऊपर शेषनाग पे, देखा टीवी में लक्ष्मी जी पांव दबा रही, वो महाविष्णु जो है वो अद्वैत आचार्य बनकर चेतन महाप्रभु के लीलाओं में आते हैं, जिनकी सफेद रंग की दाढ़ी है ना। पंच तत्व आप बोलते हैं मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। तो जो अद्वैत जो है, अद्वैत आचार्य, इन्हीं की पुकार पर चेतन महाप्रभु पृथ्वी पर आए, शालिग्राम शिलाओं पर गंगा जल और तुलसी दल चढ़ाते थे, भगवान चेतन को पुकारते थे। 50 वर्ष की आयु थी अद्वैत आचार्य की और वो भगवान चेतन को पुकारते थे, कृष्ण आप आइए, कृष्ण आप आइए, कृष्ण कृष्ण आए। तो भगवान की लीलाओं में पढ़ेंगे अद्वैत आचार्य चैतन्य के पांव दबा रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। 50 साल के थे जब वो जन्म हुआ, मतलब 50 साल तो उम्र में ज्यादा थे, और वो भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, महाविष्णु और सदा शिव का युगल अवतार, वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और तो और अद्वैत आचार्य अपने जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब वो छोटे थे तो उनके एरिया में गांव में एक स्कूल था जहां वो पढ़ने जाते थे, लेकिन वो वहां के मुख्यालय जो दीव थे, मतलब मुखिया जो थे, उनका स्कूल था, उनका अपना एक दुर्गा जी का मंदिर था और उस मंदिर में वो सभी को कहते थे आइए दर्शन करिए। तो उनका बेटा मुखिया का भी, जो होता है ना गांव के मुखिया, उनका बेटा भी वहीं पढ़ता था। उसने एक दिन अद्वैता से कहा, अद्वैता चलो दुर्गा को प्रणाम करो। तो रोज अद्वैताचार्य मना करके चले जाते थे। उसने ये बात अपने पिता से कही, हमारे स्कूल में पढ़ता है और हमारे स्कूल के मंदिर का अपमान करता है, इसको निकाल दो या इसको प्रणाम करवाओ। अब देखिए भगवान विष्णु की स्थिति देखिए, सब लोग बोलते हैं ना बराबर है, भगवान को पकड़ लाया अद्वैत को और कहा अद्वैत प्रणाम करो। सिर्फ छोटी उम्र के थे, स्कूल में पढ़ते थे, ऐसे दुर्गा का एक मंदिर था, वहां पर दुर्गा नवरात्रि बनाए जाते थे, वहां बड़े बड़े चुन्नियां बांध कर लोग तिलक लगाते थे, त्रिशूल से नाचते थे, कूदते थे, और सब वो मुखिया के आने पर खुश हो गए। सबने कहा अगर अद्वैत आज तुमने देवी को प्रणाम नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। अभी इस बात को सोचकर के अद्वैत ने बहुत मना किया, लेकिन इतना प्रेशर डाला, चारों तरफ से लोगों ने पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आप लोग नहीं मानते मेरी बात तो मैं प्रणाम करता हूं। अद्वैताचार्य ने लेट करके दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया आप जानते हैं क्या हुआ, दुर्गा का विग्रह दो भागों में फट गया और उसमें से दुर्गा जी निकल आई और दुर्गा जी प्रकट होकर के कहती हैं ये क्या किया तुमने, मेरे प्रभु कृष्ण को मेरे आगे प्रणाम करा दिया। ऐसे चिल्ला करके दुर्गा चिल्लाई और सभी लोग घबरा गए। उस दिन से सब लोग मान गए कि हमें किसका भजन करना है, कृष्ण का भजन करना। तो ऐसा साधारण नहीं है और ऐसा एक बार नहीं हुआ, अनेकों बार हुआ। एक भक्त थे भगवान के, जड़ भरत, आप जानते हैं जड़ भरत जो थे वो पहले राजा भरत थे, अंत काल में उन्होंने सब कुछ त्याग करके जंगल गए, जंगल में जाकर के एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए, अपने अंत काल में हिरण का नाम लेते हुए शरीर छोड़ा, उनको हिरण बनना पड़ा। हिरण बनके वो मंदिर के प्रांगण में घूमते थे, सूखे पत्ते खाते थे, वैराग का जीवन जीते थे। एक दिन उन्होंने सोचा ये बहुत उम्र निकल गई इस शरीर में, क्योंकि भजन पक्का हुआ था इसलिए स्मरण बना रहा, हिरण की योनि में भी भजन याद रहा, लेकिन आसक्ति के कारण शरीर बदल गया था, लेकिन आत्मा के सूक्ष्म रूप में सब कुछ स्मरण था कि मैं पिछले जन्म में पूरी पृथ्वी का राजा भरत था, मैंने सब कुछ त्याग कर भजन के लिए आया, लेकिन आसक्ति के कारण एक हिरण में फंस गया। और फिर उन्होंने जब अगला जन्म लिया तो उन्होंने जड़ भरत बोले बोलूंगा नहीं, एक गूंगा बच्चा बनकर पैदा हुए ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण ने कहा बोलो गायत्री जाप बोलो, तो कहते थे बोलूंगा नहीं, गायत्री मंत्र नहीं बोला ब्राह्मण के घर में, तो उन्होंने कहा जा खाता है इतना सारा भात किसी काम का नहीं है, तो निकाल दिया। यू आर ऑफ नो यूज सो आई अब्यूज, अब्यूज किसको करते हैं जिसका कोई यूज नहीं, यू ऑफ नो यूज सो आई अब्यूज यू, निकाल दिया उनको और कहा हमारे इस खेत में बैठकर चिड़िया पक्षी गाय जानवर ना आए, इसकी खेती कर देखभाल करो। वो बैठे रहते थे चुपचाप और भजन करते थे, क्या बोलते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भजन कर रहे थे। अभी कुछ लोगों को हट्टा कट्टा व्यक्ति खाता है और एनर्जी तो वेस्ट होती नहीं, बोलता नहीं है, बोलने से हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है, प्रजल्पा करने से, इधर उधर की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, कृष्ण कथा करने से जितनी शक्ति बढ़ती है प्रजल्पा करने से उतनी शक्ति का क्षीण ही हो जाती है, फिर ग्लूकोन डी पीना पड़ता है। और अगर हम भजन करेंगे तो हम क्या है शक्तिशाली होते हैं। आपने देखा होगा एकादशी का व्रत जो लोग निरंतर करते हैं उन्हें शक्ति का एहसास होता है, लेकिन बाकी मैं देखता हूं नवरात्रे के भक्त होते हैं व्रती होते हैं ऐसे ऐसे चक्कर खा के गिरते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कब खत्म हो, क्योंकि वो भजन नहीं कर रहे भगवान का सही रूप से। तो इस प्रकार से जड़ भरत को जंगली लोगों ने उठा लिया, कहा इसकी बलि चढ़ाएंगे अपनी काली पर। एक काली मैया थी बहुत विशाल अष्टभुजाधारी, हाथ में उसके एक बहुत बड़ा फरसा हुआ करता था, ये ले गए जंगल के लोग उठाकर जंगली जंगल से अंदर ही अंदर। जड़ भरत कुछ बोल नहीं रहे, डिफेंडिंग भी नहीं कर रहे हैं, कहते हैं अगर आपके ऊपर कोई दोष लगाया जाए और आप डिफेंड करो तो सही मायने में आप पशु के स्तर पर आ जाते हो, मनुष्य के स्तर से गिर के पशु के स्तर, क्योंकि पशु का कार्य है ईटिंग खाना, स्लीपिंग सोना, मेटिंग बच्चे पैदा करना और डिफेंडिंग अपनी रक्षा करना। कुत्ते को पत्थर मारो तो भौंकेगा, इंसान के पास में चॉइस है, पत्थर मारो भोग भी सकता है नहीं तो चुपचाप जा भी सकता है, कुत्ते के पास में कोई चॉइस नहीं है, वो बंधा हुआ है प्रकृति के नियमों में। सिर्फ 4 लाख योनियां ऐसी है मनुष्यों की, 80 लाख बाउंड है, 4 लाख फ्री है, हम रिएक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। किसी ने बुरा बोला तो मेरे पास में ऑप्शन है, मैं बुरा बोलूं या चुप रह करके कुछ और जवाब दूं। तो इस प्रकार से जड़ भरत बिल्कुल डिफेंड नहीं किया, अपनी रक्षा नहीं की, उठा करके ले गए काली के सामने लिटा दिया, कहा आज मांस से भरा हुआ ये बलि चढ़ाएंगे, बाद में इसका मनुष्य मांस काली प्रसन्न होगी, आशीर्वाद देगी, हम सभी शक्तिशाली हो जाएंगे। और उनके मुखिया आया, उसने चेकिंग किया कहीं से कटा फटा तो नहीं है, खंडित तो नहीं है। पूरा चेक करने के बाद में बड़ी वाली धार वाली चाकू लेकर के आया और उनका गर्दन ऐसे लटका दिया था और नीचे जमीन पे रस्सियों से बांध दिया था और काली का नाम लेके जय काली करके काटने लगे। जैसे ही गर्दन के पास में पहुंचा, आप जानते क्या हुआ, वो उनकी दुर्गा माई काली मूर्ति के स्वरूप में खड़ी थी, कई वर्षों से पुष्ट गुजर चुकी थी, लेकिन वो काली प्रकट हो गई और उसने अपने फरसे से एक एक व्यक्ति को काटा जो उनके भक्त थे, सबको काटा और दोनों हाथ से ऐसे जड़ भरत को उठा लिया। जड़ भरत भागे वहां से निकल करके और सभी को वध करने लग गए। सारे लोग हैरान थे, हमारी देवी हमसे ही नाराज हो गई क्यों, भक्त को उठा लाई थी। आप देखिए भक्त की बड़ी शक्ति है, भक्त सिद्ध बन जाता है खाली हरि नाम लेते लेते, लगता है देखने में अच्छा आप लोग ऐसे लगाते हैं हम लोग ऐसे लगाते हैं, अरे ऐसे वाला लिटा देगा जमीन में, ऐसे वाला ऊपर ले जाता है सीधा भगवत धाम। ये तिलक लाल रंग का तिलक नहीं लगाना चाहिए, भक्तों को व्हाइट तिलक लगाना चाहिए, ये वैष्णव तिलक, ये होते हैं भगवान विष्णु के चरण और उस पर तुलसी अर्पित की जाती है ऐसे करके। इधर ब्रह्मा विराजमान हो जाते हैं, इधर शिव जी विराजमान होते हैं, बीच में विष्णु चरण आते हैं। ये साधारण तिलक नहीं है कोई कि ऐसे ही लाल रंग का ऐसे गीला किया पानी में लगा लिया लाल तिलक, ये बहुत शक्तिशाली है वैष्णव तिलक। तो भगवान की भक्ति और देवी देवताओं की भक्ति में बहुत भेद है। वर्णन करते हैं अगर आप किसी देवता से कुछ मांगते हैं तो देवता आपको दे भी देते हैं आपके लिए, भले ही वो हानिकारक क्यों ना हो। जैसे अगर आपका बच्चा आपसे कुछ मांगना चाहे, जैसे गला खराब है उसका और वो कहे पिताजी 10 रुपए दीजिए आइसक्रीम खानी है, तो देंगे आप, हाँ या ना? नहीं, नहीं। लेकिन अगर आइसक्रीम के लिए वो 10 रुपए आपके पॉकेट से निकाले या कहीं से उठाए या पहले के रखे हुए कुछ पैसे लेकर आइसक्रीम वाले के पास जाए और कहे भैया 10 रुपए की आइसक्रीम दे दो, देगा कि नहीं देगा? उसको क्या चाहिए? 10 रुपए। और पिता को क्या चाहिए? बच्चा। ऐसे ही देवी देवता को क्या चाहिए? यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन, मेरी तारीफ, मेरा भजन। कृष्ण को क्या चाहिए? भक्त। इसलिए कृष्ण वही देते हैं जो आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए फायदेमंद हो। देवी देवता वो देते हैं जिससे आपको अहंकार भी आ सकता है। रावण को क्या दिया? अहंकार दिया। शिव का इतना बड़ा उपासक रावण जब वारा जा रहा था, सामने शिव जी आए, पार्वती आई, पार्वती कहती हैं हे प्रभु रक्षा करें, आपका भक्त, आपकी बदनामी होगी, आपका भक्त मारा जा रहा है, लोग कहेंगे अरे शिव जी की फायदा क्या पूजा करने से, मारा जाता है। शिव जी क्या बोलते हैं? शिव जी ने कहा इसने मेरे बॉस से पंगा ले लिया, राम से पंगा ले लिया, तो बताइए मैं कैसे इसकी रक्षा करूं। बोले अभी तो पूरे संसार को पता चल जाना चाहिए मेरे प्रभु कौन है, मेरे प्रभु श्री राम। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों दृष्टांत से हम देख सकते हैं कि देवी पूजा या फिर कोई भी देवता की पूजा करने में और कृष्ण पूजा करने में कितना भेद है। सुदामा के घर में कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने किसी देवी देवता की शरण नहीं ली, सदा भगवान कृष्ण के नाम का भजन करते, दृढ़ता थी। लेकिन एक दिन जब भगवान उन पर कृपा करना चाह रहे थे, उनके घर वो 3 मुट्ठी चावल लेकर के पहुंचे, तो उन्होंने क्या प्रदान किया, पूरी की पूरा इतना बड़ा महल दिया कि सुदामा पुरी द्वारका पुरी के समरूप ऐश्वर्यशाली थी, जमीन में रत्न जड़ित पत्थर लगे थे। लोग बोलते हैं कृष्ण का भजन करने वाले गरीब रह जाते हैं, बिल्कुल गलत। ध्रुव महाराज ने 5 साल की उम्र में वो प्राप्त कर लिया था जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला। ब्रह्म लोक जो है वो हमारी पृथ्वी से 6 लोक ऊपर ब्रह्म लोक समर्पित हो जाता है, समाप्त। ब्रह्म लोक से भी ऊपर वैकुंठ लोक से नीचे ध्रुव लोक बनाया गया ध्रुव महाराज के लिए। और खाली ध्रुव लोक नहीं बनाया, जब तक जीवित रहे 36,000 सालों तक उन्होंने राज्य भी किया। 5 साल के लिए लड़ाई चलती है जी गद्दी की, 36,000 साल तक राज्य किया। क्यों? 6 महीने कृष्ण भजन कर लिया था खाली 6 महीने, लेकिन बड़ी दृढ़ता से किया, हमारी तरह नहीं किया। दृढ़ता से भजन करने से भगवान प्रसन्न हुए और अंत काल में जब मृत्यु आई, मृत्यु का सर पर पांव रखा, मृत्यु बोली कि देखिए सब लोगों को शरीर छोड़ना पड़ता है ध्रुव जी, 36,000 साल हो गए आपके, अब चलो ये चट्टान पे खड़े थे, नीचे मृत्यु आई, मृत्यु के सर पे पांव रखा और अपने वैकुंठ विमान में बैठ गए। मृत्यु देखती रह गई, ये क्या हुआ, बिना शरीर छोड़े चले गए। तो जब ध्रुव महाराज बैठ गए तो पूछते हैं वैकुंठ के लोगों से, मेरी माता का क्या हुआ जिसने मुझे भजन करने में पक्का किया, मेरी सुनीति माता का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा सुनीति माता का विमान आपके विमान से आगे जा रहा है, देखिए। तो उन्होंने ऐसे करके देखा, सुनीति का विमान आगे था, ध्रुव का विमान पीछे था। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के घर में कोई भजन करता है उसके माता पिता भी विमान में वैकुंठ जाएंगे, चाहे वो कुछ भी करते हो। और वो व्यक्ति जैसे ही ध्रुव लोक में पहुंचे, ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज और सुनीति माता पहुंचते ही सारे के सारे जितने ग्रह हैं आपके, शुक्र शनि जिनसे सब लोग चिंतित रहते हैं, ज्योतिषों के चक्कर काटते हैं, टीवी देखते रहते हर टाइम, वो सारे के सारे ग्रह मंडल ध्रुव लोक के चक्कर काट रहे हैं आज तक। क्यों? बड़ा भारी भक्त बैठा हुआ है उसके अंदर, ध्रुव महाराज। सभी मंडल गहनों प्रदक्षिणा, गंभीर रूप से प्रदक्षिणा करी, ध्यान पूर्वक प्रदक्षिणा कर रहे हैं आज भी, चक्कर काट रहे हैं कि इनकी परिक्रमा करने से हमें शायद कुछ कृपा मिल जाए। हम प्रदक्षिणा इसलिए करते हैं किसी की परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा, मंदिर परिक्रमा, ताकि हमें फल मिले, हमारा ध्यान उनके चरणों पे हो। ऐसे ही सारे ग्रह नवग्रह चक्कर काट रहे हैं ध्रुव लोक के कि हमें भी कृपा मिल जाए। सोचिए जरा क्या स्थिति है भक्त की, है ना? तो इसलिए व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब यह भी नहीं कि कृष्ण भजन करता है तो सभी का अपमान करे। अगर मैं प्रधानमंत्री का जान पहचान का हूं तो मुझे होम मिनिस्टर को भी उतना ही सम्मान करना है जितना कि मैं प्रधानमंत्री को सम्मान करता हूं। जैसे कि अगर आप देखें, प्रधानमंत्री ने जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं, ऐसे ही भगवान ने भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं और उनके हेड बनाए हैं। तो अभी हम थोड़ा सा कंपटीशन करते हैं, आप लोग बताएंगे कौन से डिपार्टमेंट के हेड कौन है। एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास है? हाँ जी, सब लोग बोलिए। अच्छा बताइए, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? लक्ष्मी जी के पास। अच्छा, रेन मिनिस्ट्री, वाटर डिपार्टमेंट, रेन मिनिस्ट्री इंद्रदेव के पास में। अच्छा, वाटर रिजर्व करने की जो है टैंक्स वगैरह, वाटर रिजर्वियर मिनिस्ट्री, हाँ, वरुण देव। अच्छा, ये एयर ब्लो करती है, एयर मिनिस्ट्री, एयर डिपार्टमेंट, वायुदेव, पवन देव। हीट एंड लाइट मिनिस्ट्री, अग्निदेव, हीट एंड लाइट, है ना। पावर मिनिस्ट्री, सूर्यदेव। अच्छा, वेजिटेशन मिनिस्ट्री, फल सब्जियों के अंदर रस पैदा करना, चंद्रदेव। सूरज चंद्र की रोशनी से जो है ना वो वेजिटेशन के अंदर रस आता है, और गीता में भगवान कहते हैं कि वो चंद्र को रस शक्ति मैं प्रदान करता हूं। प्रभास और सूर्य शशि अस्मि, मैं ही हूं सूर्य और चंद्र का प्रकाश। तो इस प्रकार से आप देखें, ट्रेजर मिनिस्ट्री किसके पास है? कुबेर के पास में, बिल्कुल सही। और होम मिनिस्ट्री, दुर्गा, दुर्गा जी, ये दुर्ग है ना पूरा ब्रह्मांड, ये जिसमें हम रहते हैं पृथ्वी, दुर्ग की देवी है दुर्गा, होम मिनिस्ट्री है उनके पास में। और डिफेंस मिनिस्ट्री, हाँ, शिवजी के पास तो डिस्ट्रॉइंग मिनिस्ट्री है, होते हैं ना बिल्डिंग बनाने की एक टीम होती है, एक बिल्डिंग तोड़ने वाली टीम होती है, संहारक है वो, डिस्ट्रॉइंग, कंस्ट्रक्शन वाले हैं ब्रह्मा इंजीनियर और तोड़ने वाले हैं शिव जी। तो एक होती है, एक टीम होती है ना कि नई बिल्डिंग बनाएंगे, जाकर पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दो, तो डायनामाइट्स लगा के पहले पहाड़ तोड़े जाते हैं, फिर वहां नई बिल्डिंग, नई रोड बनती है। तो ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं, शिव जी तोड़ने वाले डिपार्टमेंट के हेड है, और मेंटेनेंस करने वाला डिपार्टमेंट विष्णु जी के पास में है, और जितना भी कंस्ट्रक्शन वगैरह है ये सारा ब्रह्मा के पास में। तो आपने देखा कि इतने सारे डिपार्टमेंट है, इसका कारण क्या है? ताकि सारे सारे डिपार्टमेंट का एक हेड हो। कल को कृष्ण आकर पूछ सकते हैं, भाई हवा नहीं बह रही है तो किसको पूछेंगे? सरस्वती को पूछेंगे, वायु को पूछते हैं। तो इसलिए उन्होंने डिपार्टमेंटल हेड बने। अब डिपार्टमेंटल हेड को बोलने लग जाओ, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, ऐसे मैंने देखा है मंदिरों में गाते रहते हैं, तो कैसा लगेगा? अरे माता पिता वो नहीं, यहाँ पे गीता में भगवान कहते हैं माता पिता पितामह धाता, सारा कुछ मैं ही हूँ, जन्म देने वाला पिता भी हूँ, बाबा भी हूँ, माँ भी हूँ, कृष्ण कहते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। तो इसी के कारण हमें क्या करती है, देवी के पास एक त्रिशूल होता है। वो त्रिशूल इसलिए दिया गया होम मिनिस्ट्री को कि इन लोगों को भगवान की याद दिलाई जाए। तो त्रिशूल का मतलब होता है तीन प्रकार के शूल, शूल मतलब दुख, तीन प्रकार के दुख जो प्रदान करती है त्रिशूल से, उसको कहते हैं त्रिशूल। उसमें पहला दुख है आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि आत्मिक दुख। आदि दैविक दुख होता है सुनामी आ गई, है ना, सुनामी का आ जाना, गर्मी का पड़ जाना, ये आदि दैविक दुख है। आदि भौतिक दुख किसी और व्यक्ति का हमारे साथ बुरा व्यवहार करना, दूसरे के द्वारा दिए जाने वाले दुख। और आदि आत्मिक दुख अपने ही परिजन, अपने ही शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख, बुखार, खांसी, जुखाम, आंख में इंफेक्शन, जिसके लिए एम्स हॉस्पिटल खुला हुआ है आपका, आदि आत्मिक दुखों के लिए तो खुला है। और आदि भौतिक दुखों के लिए लोग हमारे पास आते हैं कि प्रभु जी उन्होंने हमसे ऐसे बोल दिया, बताइए क्या करें, कैसे समझे। ये आदि भौतिक दुख के लिए मंदिर खुले हैं, आदि आत्मिक दुख के लिए हॉस्पिटल खुला है, और आदि दैविक दुख के लिए सरकार लग जाती है क्योंकि वो अचानक से आते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, फिर बाद में चेंज होता है। तो ये सारे दुख क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि भगवान का भजन करें, समर्पण हो जाए भगवान को। और अगर कोई नहीं करता है तो उसको दुख झेलने पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई भगवान के समर्पण हो जाता है तो उसको दुख नहीं झेलने पड़ते। जैसे आपने देखा होगा कई बार ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं, और ट्रेन के एक्सीडेंट में कई लोग बच जाते हैं, उसका कारण क्या होता है, वो लोग भगवान की स्थिति को जानते हैं, इसलिए वो आदि दैविक दुख से भी बच जाते हैं। लेकिन अगर आदि दैविक दुख में भक्त का कुछ हो भी जाए अनिष्ट, फिर भी उसको विश्वास होता है अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, अमी नित्य दास, मैं तो आपका कौन हूं, नित्य किंकर नित्य दास हूं। तो दास को मारो राखो, लेकिन ये शक्ति तब आएगी जब कृष्ण भजन करो। बाकी लोग तो बड़े परेशान रहते हैं इस संसार में, जितने लोग हैं सब लोग मंदिर जाते हैं, सब लोग भगवान को मानते हैं, क्यों दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके पास कृष्ण भजन की शक्ति नहीं है। तो हमें सभी डिपार्टमेंट के लोगों को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, बीच में डिफेंस मिनिस्टर मिल गया, ए हट रे साइड ले, साइड ले, मेरी मीटिंग है प्रधानमंत्री से, ऐसा भी नहीं। अगर शिव मंदिर बीच में पड़ता है तो प्रणाम कर सकते हैं, हे भोलेनाथ आप इतने बड़े वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं, जैसे आप सदा राम के भजन में हैं ऐसे मैं सदा कृष्ण भजन में रहूं। हे हनुमान आप जैसे राम भजन करते हैं ऐसे ही सदा मैं कृष्ण भजन करूं। हे वैष्णव माता, हे दुर्गा माई, आप जैसे वैष्णवी बन गई हैं ऐसे मैं भी भगवान कृष्ण की शरण में वैष्णव बन जाऊं। हे गणेश, जिस प्रकार से आप नरसिंह से विघ्न हरने की शक्ति प्राप्त करके इतने बड़े देवता बन गए हैं, हे नरसिंह के चरणों में मेरा भी भजन पक्का हो जाए, हे केशव के शरण में मेरा भजन पक्का हो। इस प्रकार से उनको प्रणाम करना चाहिए, ये नहीं तुम ही हो माता तुम ही पिता हो। कंफ्यूजन करेंगे तो पिटाई ज्यादा होती है, इसलिए अच्छा है कि हम कृष्ण भजन करें और सबकी स्थिति जानते हुए सबको प्रणाम करें। तो यही इसका अभिप्राय है कि यज्ञ करना है, जैसे अगर शिवरात्रि है तो शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सोचते हुए कि ये मुझे भक्ति प्रदान करेंगे। गोपियों ने कात्यायनी माता की पूजा करी, इसलिए नहीं कि शक्ति मिल जाए, भक्त मुझे मिल जाए, धन मिल जाए, उन्होंने कहा कृष्ण पति कुरुतो नमः, कृष्ण को मेरा पति बना दो, ये भक्ति होनी चाहिए। तो हम कहीं भी जाएं, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाएं, प्रणाम करें, लेकिन मांगे एक ही चीज, कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा।